हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। ध्रुव और तारा को घर पर छोड़कर युग कृषा के साथ लंडम के लिए निकल गया था। तारा की गोली लगी होने की वजह से ध्रुव उसे पानी पिला रहा था। तभी तारा की नज़र ध्रुव की रिंग फिंगर पर गई, जिसमें एक महंगी डायमंड की रिंग थी। तारा ने नज़र उठाकर ध्रुव की आंखों में देखकर धीरे से पूछा, तुमने एंगेजमेंट कब की? तारा की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे के भाव सर्द हो गए। उसने उसी अंदाज में कहा, तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? किस इरादे से आई हो तुम यहाँ पर और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई इरादा नहीं है और ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम हजारों बार भी यही सवाल पूछोगी तो मेरा जवाब यही होगा, तारा नाम है मेरा। तारा ने धीमी आवाज में जवाब दिया और तुरंत अपनी नज़रें ध्रुव पर से हटा ली। ध्रुव के चेहरे पर इस वक्त सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने तारा से कहा, मैंने तुमसे तुम्हारा पूरा नाम पूछा है, ना कि फर्स्ट नेम। तारा अग्निहोत्री। तारा ने बिना कुछ छुपाए सीधे सीधे बता दिया। वो जानती थी कि अगर ध्रुव ने उसकी आइडेंटिटी निकालने की कोशिश की तब वो अपने आईडी प्रूफ से अपना नाम छुपा नहीं पाएगी, इसलिए उसने पहले ही पूरा नाम बता दिया था। ध्रुव आगे कुछ नहीं बोला। तारा उसकी तरफ देख रही थी। ध्रुव वहां से वापस जाता तभी तारा ने फिर से पूछा, जब मैं आखिरी बार तुमसे मिली थी तब तुम्हारे हाथ में कोई रिंग नहीं थी, बताओ तो कब सगाई की तुमने? कल रात ही की थी। तुम्हारा इंटरव्यू लेना हो गया हो तो मुझे काम करना है, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। तुम्हारा काम करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर डैड ने तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन दी है तो मैं उनकी बात को इग्नोर नहीं करना चाहता। ध्रुव ने काफ़ी रूडली जवाब दिया और फिर ऊपर कमरे में चला गया। तारा वहीं पर खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, जबकि मैं तो इसे ठीक से जानती तक नहीं। ये अच्छा इंसान नहीं है, न जाने कितने मासूम लोगों की इसने और इसके पापा ने जान ली होगी, फिर भी मैं इसके बारे में सोच रही हूँ। इसके ज़रिए मैं बहुत से क्रिमिनल्स और माफिया की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ उलझ रही हूँ मैं। तारा खुद नहीं समझ पा रही थी कि इतनी कम मुलाकातों के बावजूद ध्रुव ने उसके दिल में कैसे जगह बना ली थी। जल्दी से वो अपने कमरे में आई और ब्लैंकेट में मुंह डालकर सो गई थी। वहीं ध्रुव ऊपर उसे देख रहा था। क्या ये सच कह रही है कि ये कोई इनोसेंट पर्सन है? पर देखकर लगती क्यों नहीं? लगती है इनोसेंट, पर इसकी हरकतें काफ़ी सस्पिशियस हैं और मैं रिस्क नहीं ले सकता, ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा। वो तारा के बारे में सोच रहा था तभी उसके पास मेहर का कॉल आया। ध्रुव को पता ही था कि मेहर उससे कॉन्टैक्ट जरूर करेगी। उसने कॉल रिसीव करके कहा, बोलो किस लिए कॉल किया है? ना हेलो ना हाय और ना ही कोई हालचाल पूछा, सीधा काम की बात पर आ गए। भूल गए क्या ध्रुव, दो दिन पहले हमारी एंगेजमेंट हुई थी, मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त वो अपनी गाड़ी में थी। नहीं सब याद है, बस अचानक जाना पड़ा, मैं टाइम निकालकर तुमसे मिलता हूँ मेहर, ध्रुव ने उसे टालने के लिए कहा। वो कॉल कट करता उससे पहले मेहर जल्दी से बोली, कॉल कट मत करना, मैं मुंबई आई हुई हूँ और एक एड्रेस भेज रही हूँ, शाम को वहाँ पर मिलते हैं, मैंने हम दोनों के लिए स्पेशल डेट अरेंज की है, ये काम तुम्हें करना चाहिए पर मैं कर रही हूँ। ध्रुव ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। वैसे भी वो मेहर को अब टाल नहीं सकता था। ध्रुव ने जल्दी से अपना काम निपटाया और शाम को मेहर के भेजे हुए एड्रेस पर जाने के लिए तैयार था। वो नीचे आया तब उसे तारा की याद आई, उसी के भरोसे युग ने उसे वहां छोड़ा था। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर कहा, इसे तो मैं भूल ही गया था, इसे अकेला भी छोड़कर नहीं जा सकता, कहीं हमारे पीछे से घर में कोई गड़बड़ ना कर दे। ध्रुव तारा के कमरे में गया तो वो एक मैगजीन पढ़ रही थी। ध्रुव को देखते ही उसने मैगजीन जल्दी से साइड में रख दी। तारा सवालिया नजरों से ध्रुव की तरफ देख रही थी कि आखिर वो उसके कमरे में क्यों आया है। तभी ध्रुव बोला, किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता, तो तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, तुम बेफिक्र होकर जा सकते हो, मैं तुम्हारे पीछे से कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, तारा ने सीधे सीधे कहा। तुम्हें कैसे पता कि मैं अपनी फियांसे से मिलने जा रही हूँ जो तुमने कबाब में हड्डी बनने की बात कही? ध्रुव ने हैरानी जताते हुए पूछा। तारा की बातें सच में उसे शक के घेरे में डाल देती थी। तारा ने ध्रुव की तरफ देखा और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, पूरे दिन से घर के अंदर कमरे में बंद रहकर काम कर रहे हो, इसका मतलब साफ है कि तुम्हें ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं है, अब इतना तैयार होकर रात को जा रहे हो तो जरूर डेट पर ही जाओगे ना? ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छी है, पर तुम्हें ये मेरे सामने नहीं बताना चाहिए, जानती हो ना मुझे पहले से तुम पर डाउट है, तुम्हारी ये बातें तुम्हें खतरे में डाल सकती हैं, ध्रुव ने बौं उठाकर कहा। उसकी बात सुनकर तारा हंसते हुए बोली, चाहे तो पता लगा लो, कुछ नहीं मिलेगा। उसकी स्माइल प्यारी थी जिसमें उसकी हनी ब्राउन आइज छोटी हो जाती थी। मतलब काफी अच्छी तरह से तैयारी करके आई हो, ध्रुव बोला। वो अपने बातों के जाल में तारा को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर तारा ने उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए सिर्फ अपने कंधे उचका दिए थे। ध्रुव ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरे पास कपड़े नहीं हैं, हॉस्पिटल गाउन में तुम मुझे कहाँ कहाँ लेकर घूमोगे, तारा ने जवाब दिया। ध्रुव ने पहले ही तारा के लिए कपड़े मंगवा लिए थे, बस ये बात अलग थी कि उसने अभी तक तारा को दिए नहीं थे। ध्रुव बाहर गया और कुछ शॉपिंग बैग्स के साथ अंदर लौटा। ध्रुव ने तारा के हाथ में एक बैग देते हुए कहा, इसमें कंफर्टेबल ड्रेस है, चाहो तो तुम बाहर भी पहनकर जा सकती हो। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं अपने आप कपड़े नहीं पहन सकती, नर्स ने मेरी हेल्प की थी, तारा ने जवाब दिया। वो ध्रुव के साथ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसके पीछे से उसे ध्रुव के हर को एक्सप्लोर करना था, तो वहीं ध्रुव उसे छोड़ नहीं सकता था। उसने तारा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और बिना उसकी परमिशन लिए पीछे से उसके हॉस्पिटल गाउन को खोलने लगा। तारा ने ध्रुव का हाथ पकड़ना चाहा पर वो नाकामयाब रही। इस हरकत पर तारा हल्के गुस्से में बोली, देखो तुम इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ये गलत है। मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है, मेरी नजरें अभी भी नीचे ही हैं, और तुम्हें बता दूं कि मेरी फियांसे तुमसे कहीं ज्यादा हॉट है। मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम्हारा तो चांस ही नहीं है। फिर भी डाउट है तो लाइट्स बंद कर देता हूँ, ध्रुव ने बेपरवाही से कहा। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया, उसका दिल मानो बगावत पर उतर आया हो। ध्रुव ने लाइट्स डिम कर दी ताकि तारा अनकंफर्टेबल ना हो। वो फिर भी तारा को आराम से कपड़े पहना रहा था। ध्रुव उसे कपड़े पहनाते हुए इतना भी ध्यान रख रहा था कि गलती से भी उसकी उंगलियां तारा की स्किन को टच ना हो। तारा ध्रुव को परेशान करने के लिए हल्का सा मुस्कुराकर बोली, लगता है तुम अलग टाइप के हो, जो तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे साथ में वो लड़का रहता है वीर, कहीं तुम्हें उसमें तो इंटरेस्ट नहीं है? ध्रुव रहा, वो मेरा दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी तुम्हें अपने दिमाग के घोड़े जितने दौड़ाने हैं दौड़ा डालो, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं पता लगा पाओगी, ध्रुव ने चिढ़ने के बजाय काफी शांति से जवाब दिया। इस वक्त वो कुछ भी करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर एक बार उसका मूड खराब हो गया तो फिर काफी देर तक सही नहीं होता था। ऊपर से उसे मेहर से भी मिलने जाना था।
तारा को कपड़े पहनाने के बाद ध्रुव ने उसके बालों को सेट किया। फिर उसने तारा के चेहरे की तरफ देखकर कहा, इतना ही कर सकता हूँ, मुझे मेकअप वगैरह करना नहीं आता है। आई होप कि तुम कंफर्टेबल हो। हाँ चलेगा, क्योंकि मैं वैसे भी मेकअप नहीं लगाती हूँ, तारा ने बेपरवाही से कहा। तारा को उसके कंफर्टेबल हील्स पकड़ाने के बाद ध्रुव बाहर चला गया था। तारा एक हाथ से अपनी हील्स पहनने लगी। जैसे ही ध्रुव बाहर गया, तारा ने जल्दी से मेकअप किट निकाली और हल्की हल्की अपने फेस पर मेकअप करते हुए बोली, एक नंबर का डफर है, जरूरी थोड़ी ना है कि सब इसकी तरह नेचुरली अच्छे लगे, लड़कियों को थोड़ा बहुत मेकअप करना पड़ता है। तारा ने जल्दी से होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई और आंखों में काजल लगाकर बाहर आ गई। इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया था। तारा को लगा ध्रुव उसे अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद वीर ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था। वीर के आते ही ध्रुव ने उससे कहा, मैं मेहर के साथ डिनर के लिए जा रहा हूँ, तो तुम इसका हॉस्पिटल में चेकअप करवाओगे और उसके बाद खाना खिलाने के बाद इसे घर पर ड्रॉप कर देना। इसके अलावा इसे किसी तरह की शॉपिंग करनी हो तो उसमें भी इसकी हेल्प कर देना। वीर ने उसकी बात पर हामी भरी और उन दोनों को हॉस्पिटल ड्रॉप करने के बाद ध्रुव मेहर के पास चला गया। वहीं मार्टिन वापस मुंबई आ चुका था और इस वक्त वो वीर पर ही नज़र बनाए हुए था। जब उसने वीर और तारा को साथ में देखा तो वो काफ़ी गुस्से में था। मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की है इस लड़की ने, उसे क्या लगा ध्रुव राणा के दम पर खुद को और अपने भाई बहनों को बचा पाएगी मुझसे? पहले मैं इसे मारूंगा और बाद में इसके भाई बहनों को, मार्टिन ने गुस्से में कहा और वो तारा के पीछे चल दिया। मार्टिन मिली के भाई बहनों को तारा का भाई बहन समझ रहा था और इस वक्त उसने उन्हें किडनैप कर लिया था। उनके साथ में मिली भी थी, मार्टिन को तारा भी चाहिए थी तो वो उसके पीछे चल दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट पर, और पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तारा कैसी लगी आपको?